सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की तीन देशों की यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। साइप्रस, G7 यानी कनाडा और उसके बाद क्रोएशिया के अपने सफल दौरे के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली वापस आए। इन तीन देशों की यात्रा का क्या है कूटनीतिक महत्व, क्या क्या चर्चाएं हुई और क्या संभावनाएं भविष्य के लिए बन रही है भारत के नजरिए से, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सज्जनहार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले अगर क्रोएशिया की यात्रा से शुरू करें, बहुत छोटा सा देश अगर भारत के नक्शे पर देखें तो लखनऊ के जितनी आबादी है 40 लाख के आसपास और हिमाचल प्रदेश के आसपास का क्षेत्रफल है उस देश का, लेकिन महत्व बहुत ज्यादा है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि क्रोएशिया जो है वो गेटवे ऑफ यूरोप भी बन सकता है एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए। कैसे देखते हैं उनकी यात्रा को आप?
बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है क्योंकि जब से क्रोएशिया अपना स्वाधीन हुआ है 1991 में, पहले वो यूगोस्लाविया का एक अंग था, तो जब से आजादी मिली है 1991 में उसके बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए हैं, तो उनकी पहली यात्रा थी। मतलब अगर आप देख लें करीब 34 साल के बाद, उनकी आजादी के बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं। और अगर उससे पहले का हम इतिहास देखें तो क्रोएशिया यूगोस्लाविया का एक अंग था, परंतु उसके साथ हमारे संबंध जो थे बहुत गहरे थे। तो वहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी गए, उनका एक दिन की यात्रा थी, 18 तारीख को सुबह पहुंचे और फिर वहां से आ गए, तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन मुद्दों पर बातचीत हुई, पहले तो एक दूसरे के साथ कैसे द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाया जाए, हमारे जो व्यापार का जो रिश्ता है वो करीब $300 मिलियन हमारा बायलैटरल ट्रेड है हर साल का, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, एक आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देशों का खड़ा होना, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का ये वहां पर फिर कहना जो विश्व में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसले हैं, उनको युद्ध के क्षेत्र में नहीं उनको हल किया जाए, उनको बातचीत से हल किया जाए। ये सभी आपके सुनने वालों को याद होगा जो 2022 में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे उज्बेकिस्तान समरकंद में और वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन से, तो तब उन्होंने उनको कहा था, क्योंकि तभी ये रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब उन्होंने कहा था जो ये युद्ध का दौर नहीं है, ये युद्ध का युग नहीं है और हमें सभी मसलों को बातचीत से हल करना चाहिए। तो अभी आजकल जो हो रहा है, हमने देखा है पिछले शुक्रवार से इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है और वो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो बातचीत से इसको सुलझाना चाहिए। और आतंकवाद के विरुद्ध तो उन्होंने कहा ये केवल भारत के ऊपर हमला नहीं है जो पहलगाम में हुआ था, परंतु ये मानवता के विरुद्ध ये हमला किया गया है।
जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो साझा प्रेस वक्तव्य हुआ, उसमें दोनों देशों ने कहा कि लॉन्ग टर्म डिफेंस कोऑपरेशन प्लान बनाया जाएगा, रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या हो सकती है इसकी रूपरेखा।
देखिए, भारत अब निर्यात में, रक्षा के जो प्रोडक्शन है उसके निर्यात में उसने काफी कदम उठाए हैं पिछले कुछ सालों में। हम जानते हैं जो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है वो हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट की है, करीब $300 मिलियन का हमारा एक्सपोर्ट आर्मेनिया को भी हो रहा है, और जो अभी हमारे अपने बनाए हुए DRDO के कुछ इक्विपमेंट है, जैसे उनका प्रदर्शन रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो भी पूरी दुनिया ने देखा है, वो भी पूरी दुनिया ने समझा है, जो हमारे पास भी बहुत कुछ है। और पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं हमारा जो डिफेंस का निर्यात है वो काफी बढ़ा है, तो चाहे ये क्रोएशिया की हम बात कर रहे हैं, परंतु साइप्रस में भी जहां प्रधानमंत्री मोदी गए, दोनों देशों ने इसके बारे में बहुत रुचि दिखाई है। और हमारा डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट दस्तखत हुए थे 2022 में जब हमारे विदेश मंत्री वहां पर गए थे, और इसको अब आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करना और ज्वाइंट प्रोडक्शन करना, इसके बारे में दोनों देशों में बहुत रुचि है, और यही अभी निर्णय लिया गया जो इसके ऊपर और बातचीत होगी और हम इसको आगे लेकर जाएंगे।
क्रोएशिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेने गए। इस बार शिखर सम्मेलन थोड़ी परिस्थितियां अलग थी। एक तरफ ईरान इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, उधर रूस यूक्रेन आमने सामने है, बीच में डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है उसकी भी चर्चा पूरी दुनिया में है। ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं सज्जन हरसर कि जी समिट में मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक भागीदार नहीं है बल्कि वैश्विक मुद्दों का निर्णायक देश बन गया है, की प्लेयर बन गया है। चाहे आतंकवाद पर कड़ा रुख हो या क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी में सहयोग हो, भारत अब समाधान का हिस्सा है। कैसे देखते हैं इस बार?
जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी ये प्रश्न पूछा गया, जो भारत और कनाडा के जो संबंध हैं पिछले 1.5 साल से कोई इतने अच्छे संबंध नहीं है। आपके सभी सुनने वालों को ये याद होगा जो 18 सितंबर 2023 को तब के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वो कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर उन्होंने कहा जो भारत सरकार का वहां पर जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट उसकी हत्या में भारत सरकार का हाथ है और हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस है, मतलब एविडेंस कोई नहीं है, प्रूफ कुछ नहीं है पर एलिगेशंस हैं। तो उससे भारत और कनाडा के रिश्तों में बहुत खटास आ गई, बहुत दरार पड़ गई। तो जब मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया तो तब उन्होंने कहा जो भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व में उन्होंने कहा पांचवी हालांकि चौथी अर्थव्यवस्था है और सबसे तेजी से आगे गति से चलती हुई मेजर इकोनॉमी है और भारत का होना जो भी विश्व के मुद्दे हैं, मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियां हैं, अगर उनको हमें हल करना है तो भारत का नेगोशिएटिंग टेबल पर होना बहुत आवश्यक है। और वो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जाकर ये दिखला दिया जो उन्होंने संबोधन किया और उसमें उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध जो बोले और जो हमने अपना मत दिया जो क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसमें भारत एक अकेला G20 देशों का सदस्य है जिसने अपनी पेरिस कमिटमेंट्स को समय से पहले हमने पूरा कर लिया है। तो चाहे विश्व के और मुद्दे हों, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज तो हम बात कर रहे हैं, परंतु उसके अलावा अगर हेल्थ केयर की बात हो, शिक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो किसी प्रकार की भी बात हो, जो भी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां पूरा विश्व जो जूझ रहा है तो उसको अगर ठीक तरीके से उनके साथ सामना करना है तो भारत का वहां पर होना और भारत का मत जानना बहुत ही आवश्यक है।
ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि कनाडा में प्रधानमंत्री ने 10 घंटे के अंदर 12 द्विपक्षीय बैठक की जिसमें जर्मन चांसलर के साथ भी उन्होंने बातचीत की, मैक्सिकन राष्ट्रपति जो बने हैं क्लाउडिया शिनबाम उनके साथ बातचीत की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ उन्होंने बातचीत की। इन द्विपक्षीय बातचीत को कैसे देखते हैं? उस समय में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का सर्वदलीय संसदीय दल कई देशों की यात्रा पे गया और उन देशों में ये संदेश देने की कोशिश की कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रवैया है, उसके बाद G7 में प्रधानमंत्री का जाना और लगातार बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना,
जो भारत की ये डेलीगेशंस गई, 60 डेलीगेशंस गई, 33 देशों में वो गए और वहां पर उन्होंने भारत का रवैया बताया। तो केवल ये नहीं जो भारत का रवैया बहुत कड़ा है, परंतु जो भारत ये लड़ाई लड़ रहा है आतंकवाद के विरुद्ध, ये केवल भारत अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये विश्व की लड़ाई है और विश्व को भारत के साथ आना चाहिए और इस लड़ाई में सम्मिलित होना चाहिए। और दूसरी बात जो भारत ने कही वो ये जो अगर आतंकी हमला हमारे ऊपर होगा तो हमारे पास आज सक्षमता भी है और हमारी विल पावर भी है जो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इसीलिए जो भी आतंकवाद को सहारा देता है, जो भी उसको बढ़ावा देता है, तो उसके विरुद्ध पूरी विश्व को काम करना चाहिए। तो ये संदेश उन्होंने वहां पर दिया और मैं समझता हूं पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। आपने नोटिस किया होगा जब भारत ने 7 तारीख को वहां पर उनके जो आतंकी हाइड आउट थे और स्ट्रांग होल्ड थे उनको मारा, किसी भी देश ने भारत के विरुद्ध कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो भारत ने ऐसा क्यों किया। केवल एक चीन ने कहा जो हमको खेद है, रिग्रेट है जो ये एक्शन हुआ, परंतु भारत के विरुद्ध कोई देश नहीं बोला। और पहलगाम के बाद तो सभी देशों ने यही कहा जो भारत को पूरा अधिकार है, जो ये जो भी परपेट्रेटर्स हैं उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाए और जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय दिलाया जाए।
अशोक सर, एक सवाल जो बहुत सारे देशवासियों के जहन में रहता है और कई बार गाहे बगाहे ये चीजें सामने आती हैं कि अमेरिका सहित दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो चीन का अल्टरनेटिव देखते हैं और उस दिशा में वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था के नजरिए से भारत को तरजीह दे रहे हैं। इस G7 में क्या उसमें भी कुछ गति देखने को मिली आपके नजरिए से?
मैं समझता हूँ जो पूरा विश्व भारत की सक्षमता को समझ रहा है और भारत की सक्षमता केवल एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना नहीं, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था तो तेज बढ़ रही है परंतु वो एक डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर जो ह्यूमन राइट्स हैं, वहां पर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वहां पर जो रूल ऑफ लॉ है, वहां पर जो प्लोरलिज्म है, वो नहीं है। तो भारत ने ये सिद्ध करके बता दिया है, जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश भी आर्थिक तरीके से सफल हो सकता है। सो डेमोक्रेसीज, जैसे वो कहते हैं, डेमोक्रेसीज कैन ऑल्सो डिलीवर, ये भारत ने एक उदाहरण दिया है और मेरे विचार से ये एक ऐसा उदाहरण बहुत देशों के लिए है जो कि डेमोक्रेसीज हैं, लोकतांत्रिक हैं, परंतु जब उनकी अर्थव्यवस्था होती है उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से।
अब थोड़ी चर्चा साइप्रस की कर लेते हैं, चूंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री वहीं गए थे। पूरी दुनिया में जब प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन जब साइप्रस गए तो वर्ल्ड मीडिया ने कहा कि यह तुर्की को एक संदेश देने की कोशिश है। 13 लाख की आबादी है साइप्रस की, बहुत छोटा सा देश, लेकिन प्रधानमंत्री का वहां जाना और वो ग्रीन बॉर्डर पे, जहां पर एक तरफ जो तुर्की है और दूसरी तरफ वहां पे साइप्रस पर जो कब्जा कर रखा है तुर्की ने, उस पर जाना और वहां से संदेश देना, क्या आपको लगता है कि जो पहलगाम हमले के बाद तुर्की ने मुखर होकर पाकिस्तान का साथ दिया था, ये करारा जवाब था?
जी, मेरे विचार से देखिए, तुर्की को ये एक संदेश भेजना महत्वपूर्ण था, परंतु हमको अपने संबंध जो हैं साइप्रस के साथ केवल तुर्की के साथ उस आईने में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों देशों के इंटरनल स्ट्रेंथ है बायलैटरल में। आपका पहला प्रश्न था जो साइप्रस और क्रोएशिया को अगर हम यूरोप की नजर से देखें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर अगर हम आई में कनेक्टिविटी में देखें तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में दोनों साइप्रस और क्रोएशिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। फिर जिसे हमने बात की ईयू और इंडिया का FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इस साल के आखिर तक हम उसे खत्म करने वाले हैं, हमारा ये इरादा है, तो इसमें इन दोनों देशों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो मैं कहूंगा साइप्रस का और क्रोएशिया का भी इसमें आता है। बायलैटरली हमारे संबंध जो हैं बहुत ही स्ट्रांग हैं, रीजनली हमारे संबंध EU के हिसाब से बड़े स्ट्रांग हैं, और तुर्की को ये मैसेज देना वो उसके साथ जरूर जाता है, क्योंकि उसमें हमारा जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें बिल्कुल ये जिक्र किया है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी, भारत ने बिल्कुल ये कहा है जो हम साइप्रस के साथ हैं, जो ये साइप्रस का मसला है इसको UNSC रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग करना चाहिए और आतंकवाद के विरुद्ध भी, क्योंकि जो साइप्रस का एक तिहाई हिस्सा तुर्की ने 1974 में आकर वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर पाकिस्तान अपना अधिकार जमा कर बैठा है। यहाँ पर भी तुर्की के सिवाय कोई और देश नहीं मानता जो ये साइप्रस का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए जैसे साइप्रस ने भारत का हमेशा साथ दिया है, चाहे वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता का हो या फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का, हर क्षेत्र में, तो भारत भी साइप्रस का ऐसे ही पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करता है।
हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के इन तीन देशों की यात्रा के भविष्य में भारत के नजरिए से काफी बेहतर परिणाम मिलेंगे। इन तमाम विषयों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की तीन देशों की यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में